قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ جب بھی تجارت کی بات ہوتی ہے، بزنس کی بات ہوتی ہے، کسی چیز کے لین دین کی بات ہوتی ہے، کچھ چیزیں خود بخود انسان کے ذہن میں آتی ہیں۔ اب وہ چیزیں جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں، لازمات ہے پہلے تو جسے اصطلاح میں کہتے ہیں متعاقدین، یعنی معاملے کے جو طرفین ہیں، ایک شخص وہ ہے جو بیچ رہا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو خرید رہا ہے، اسی سے متعلق ہوتے ہیں سمن اور مسمن۔ سمن وہ چیز ہوتی ہے کہ جو قیمت کے عنوان سے دی جاتی ہے، مسمن اسے کہتے ہیں جسے شے کے عنوان سے خریدا جا رہا ہوتا ہے، یعنی جو چیز قیمت قرار پاتی ہے اسے سمن کہتے ہیں، اور جو چیز فروش کے عنوان سے آتی ہے، خریدنے کی جنس کے عنوان سے آتی ہے، اسے عربی میں مسمن کہتے ہیں۔ پھر ایک کانٹریکٹ ہے، پھر اس کانٹریکٹ کا نتیجہ ہے، یہ جو لین دین ہے اس لین دین کا نتیجہ کیا نکلے گا، آیا یہ جو تجارت ہے، یہ جو معاملہ ہوا ہے، یہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے یا نہیں، یا نو پروفٹ اینڈ نو لاس ہے، کہ جس کو اصطلاح میں، یعنی اگر نو پروفٹ اینڈ نو لاس کی بات کی جائے، اس کو تھوڑا سا ایک، یعنی نو پروفٹ اینڈ نو لاس اکنامکس میں ہے، اور ایک نو پروفٹ اینڈ نو لاس جسے کہتے ہیں ان جنرل پبلک کو، عام جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور ایک لاس کی پوزیشن ہے۔ نو پروفٹ اینڈ نو لاس جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے مراد اکنامکس میں، اگر کسی کے ذہن میں ہو تو؟ بریک ایون، تقریباً بریک ایون پوائنٹ ہوتا ہے، یعنی معمولاً ویسے، یعنی جب ہم پبلک، عام پبلک میں نو پروفٹ اور نو لاس کہتے ہیں، تو اس سے جو پبلک معنی لیتی ہے وہ بالکل ہی بریک ایون پوائنٹ ہے، جیسے آغا نے بتایا۔ لیکن اکنامکس میں بعض اوقات نو پروفٹ اینڈ نو لاس میں نارمل پروفٹ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے چھوٹا موٹا، ایگزیکٹلی نو پروفٹ اینڈ نو لاس نہیں ہوتا، یعنی ایک ایکسپیکٹڈ یا لیسٹ پروفٹ ہوتا ہے، وہ جب نہیں مل رہا ہوتا تو اس کو انسان نو پروفٹ اینڈ نو لاس شامل کرتا ہے، لیکن ذرا سا جسے کہتے ہیں ایک نسبت، کیونکہ اگر بالکل بریک ایون پر آئے، جتنے میں خریدا سمجھ لیں 100% اتنے میں جائے، تو نارملی اس میں لاس شامل ہوتا ہے، یعنی اکنامیکلی اس کو کہتے ہیں لاس ہے اس میں، ہاں، کیونکہ نو سروسز چارجز ہیں، آپ نے جو محنت کی، آپ نے جو ٹائم لگایا، وہ سارے کا سارا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کیلکولیشنز، یہ بہرحال آپ کی یقیناً میں ذہن میں مجھ سے زیادہ بہتر ہوں گی، اور اس کے بعد ایک لاس کی پوزیشن ہے۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پر کہہ رہے کہ میں تمہیں خود بتاؤں تجارت، جبکہ بارہا مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ خرید و فروش کی بات قرآن کریم میں کرتا ہے۔ مثلا کسی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو ہدایت کے بدلے گمراہی کو آپٹ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فما ربحت تجارتہم ربح، یعنی فائدہ، یہ جو تجارت ہے اس کا کوئی بھی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ کسی مقام پر اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا نقصان کی بات کرتا ہے، مشہور و معروف آیت آپ کے ذہن میں ہوگی، کیا ہے، جہاں واضح طور پر اللہ خسارے کی بات کر رہا ہے، کیا مقام ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان یعنی الانسان تمام انسان، کیٹیگری آف ہیومن بینگس، بات تحقیق یہ جو کیٹیگری آف ہیومن بینگ ہے یہ کیا ہے، خسارے میں ہے۔ خسارے میں اور نقصان میں کیا فرق ہے، اگر کسی کے ذہن میں ہو ٹیکنیکلی عربی کے اعتبار سے، خود نقصان میں اور خسارے میں کیا فرق ہے،
ہاں
से टेंजिबल इनटेंजिबल तकरीबन ये सारे माना किए जा सकते हैं, लेकिन नुकसान की जो बेस है वो नक्स में है। अरबी में नुकसान जिसको कहते हैं अरबी के अतबार से नक्स में है, नक्स से ही नुकसान है। नक्स किसे कहते हैं? बेसिकली डिफेक्टिव, किसी चीज़ में जो डिफेक्ट होता है उसके अतबार से नक्स, या कमी उसकी क्वालिटेटिव एतबार से जब हो तब कहते हैं। खसारा क्या है, खुसरान क्या है? खुसरान बेसिक असल में उर्दू में जिसको हम नुकसान कहते हैं, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं खसारे का लफ्ज़, ऐसा नहीं है, लेकिन उर्दू में एग्जैक्टली जो नुकसान का माना हम लेते हैं मामूलन कि कारोबार में नुकसान हो गया, मुझे बहुत नुकसान हो गया, ये जो नुकसान का माना हम उर्दू में लेते हैं अरबी में एग्जैक्टली यही माना खसारे के हैं। यानी अरबी में जो नुकसान है या नक्स है वो बेमानी है कमी है, वो बेमानी है किसी शय के अंदर कोई ऐब होना डिफेक्ट होना, उस एतबार से लिया जाता है, नक्स के एतबार से जिसको कहा जाता है। खसारा लेकिन एग्जैक्टली वही माना लेते हैं जो हम उर्दू में नुकसान के माना लेते हैं। अच्छा, खसारा इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है कि उर्दू में खसारा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन खसारे से भी हम वो तकरीबन वही माना ले रहे होते हैं जो नुकसान से ले रहे होते हैं। खसारा क्या है? खसारा ये है कि जब आपने जो चीज़ इन्वेस्ट की है, जो आपने माल लगाया और उससे जो आप प्रॉफिट लेना चाह रहे थे वो ना मिले। खसारे के और बहुत सारे माना है, जिस तरह से आगा ने इशारा भी किया कि क्या हो रहा है, आपका जो माल है आपके हाथ में वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ऑब्सोलीट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, ज़ाया होता जा रहा है। अब ये जो ज़िया है ये इन द एंड रिजल्ट इसका क्या है, खसारा है, लॉस है। लिहाजा अल्लाह ताला वहाँ पर इशारा फरमा रहा है कि तुम्हारा जो माल है, क्यों इन्नल इंसान लफी खुसर है, इसलिए कि असल सरमाया जो इंसान के हाथ में है वो क्या है, उसकी उम्र है। अच्छा, इसके ऊपर उराफा एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं कि पुराने ज़माने में बर्फ़ बेचने वाले जो है गर्मियों में आया करते थे और उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि जितना जल्दी ये बर्फ़ फ्रूश में पहुँच जाए उतना बेहतर है। क्यों? इसलिए कि विद एवरी सेकेंड वो जो हाथ में चीज़ है वो क्या हो रही है, पिघल रही है, उसका जो वेट है वो कम होता जा रहा है, उसका जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। सो जितनी जल्दी ये मामला हो जाए उतना ही आपको फ़ायदा है, और जितनी देर में होगा उतना क्या होगा, नुकसान होगा। इंसानी उम्र को तशबीह दी गई उस बर्फ़ से जो गर्मी में क्या हो रही है, पिघल रही है। बाज़ औक़ात हमें उसके पिघलने का एहसास नहीं होता, लेकिन जिसका माल है, अब देखिए जो माल के उनवान से लेकर बैठा हुआ है उसके लिए कितना, उसके लिए एवरी सेकेंड इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए कि विद एवरी सेकेंड उसका जो माल है वो क्या हो रहा है, कमी की तरफ जा रहा है। हमारी उम्र जो है उसकी कैफियत क्या है, विद एवरी सेकेंड हमारा ये माल, ये जो हमारे हाथ में दे दिया गया तिजारत के लिए अल्लाह ने हमें दे दिया, अब इस तिजारत में क्या हो रहा है, ये माल विद एवरी सेकेंड कम होता जा रहा है। लिहाजा अल्लाह ने बड़े वाज़ह तौर पर कह दिया इन्नल इंसान लफी खुसर। अब ये जो इल्ला लगाया गया है ये क्या है, ये जो इस्तिस्ना दिया गया है ये क्या है, इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। ये क्या है कि जिस किसी ने भी अपने सरमाए को इन चार कंडीशंस के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया वो खसारे की कंडीशन से बाहर आ जाए। अच्छा, मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में क्या कि तिजारत अल्लाह ताला, यानी आपकी कम्यूनिटी को तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी ज़बान से बात कर रहा है, तिजारत की बात कर रहा है, खरीस व फरूश चल रही है, फ़ायदा नुकसान ये मसाइल हैं सारे। इत्तेफाकन अल्लाह वांट टू डू बिजनेस विद अस, वो चाहता है हमसे खरीद व फरूश करना। सवाल ये कि हमें अब वो हुनर आना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से सिवाय वो जिसको हमारे इस्तेलाह में कहते हैं चूना लगाने के, बाकी जो हुनर हैं सही माना में बिजनेस के हुनर वो आने चाहिए, क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता, धोखे के मरहले में दाखिल होंगे तो अपना नुकसान करेंगे, लिहाजा चीटिंग वाले मरहले को साइड पे कर दें। उसके बाद जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्वालिटी होती है ना, एंटरप्रेन्योरशिप एक इटसेल्फ एक क्वालिटी है, हाउ टू डू बिजनेस, कैसे आप प्रेजेंट करेंगे अपनी चीज़ को, द बेस्ट आप अपनी शेयर को प्रेजेंट करेंगे, वो बेस्ट अपनी जगह खुद ब क्यों होता है कि एक ही जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं तकरीबन, लेकिन एक की जो मार्केटिंग टेक्निक्स हैं या उसकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो उसको क्या बना देती है, बेहतर। सिमिलर इज विद गॉड। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है सबसे, कि अल्लाह ताला इट्स, हम इसको कभी गौर से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि द प्रोसेस वी डू विद आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस खुदावंद हमसे कर रहा है। अच्छा, वहां पर हम अपनी जो उस वक्त की नीड है जब हम बच्चों के साथ कर रहे होते हैं उसको समझ लें तो जरा सा एहसास, नॉट कामिल, पूरा एहसास नहीं, तकरीबन उस जैसा एहसास हो जाएगा कि अल्लाह ताला क्यों हमसे बिजनेस करना चाहता है। हम क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ, हम बच्चों को खुद कोई चीज़ देते हैं और उसके बाद उनसे लेने की कोशिश करते हैं, उनके साथ एक तरह का मामला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि हमने खुद दिया है, हमारे अपने बच्चे हैं, लेकिन हम उनको पहले एहसास मिल्कियत दिलाते हैं और एहसास मिल्कियत दिलाने के बाद हम उनसे गिव एंड टेक वाले मरहले में आ जाते हैं। फिर हम क्यों, वी वॉन्ट टू क्रिएट सम क्वालिटीज, हम चाहते हैं हमारे बच्चों के अंदर कुछ क्वालिटीज पैदा हों। लिहाजा वो माँ बाप अब जो अपने बच्चों में चाहते हैं कि इनके अंदर सखावत पैदा हो, इनके अंदर ईसार पैदा हो, वो क्या करते हैं अपने बच्चों को देने के बाद, अपने बच्चे को दे खुद भी सकते हैं लेकिन क्या कहते हैं अपने बच्चे के हाथ में रख के कहते हैं बेटे आप बाकी सबको दो। क्यों बच्चा क्यों दे, इसलिए कि वहाँ पर माँ बाप क्या चाह रहे होते हैं, बच्चे के अंदर ये ईसार कुर्बानी देने की सखावत की ये क्वालिटी क्रिएट हो। लिहाजा ये जो गिव एंड टेक, ये जो सारे मामलात हैं, क्यों हम अपने बच्चे के कर रहे होते हैं, वी वॉन्ट टू ट्रेन हिट, हम अपने बच्चों को ट्रेन करना चाह रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कुछ सिफात हसना हमारे बच्चों में पैदा हो। तकरीबन इसी तरह मैंने फिर कहा कि बहुत ज़यीफ सा ये इस कंडीशन है, खुदा के मामले में ये कामिल कंडीशन है, कामिल है। खुदा ने जो कुछ हमारा, हम हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका है, खुदा का, वो देकर हमसे फिर बंटवाता है, वो देता है हमें और देने के बाद कहता है तुम बांटो। हम एकदम सवाल आता है ना, देखें ये यहाँ पर वो सारे सवाल हल होते हैं, क्यों अल्लाह ने बास को नहीं दिया, क्यों अल्लाह ने बास को दिया, हम ये अपने साथ करते हैं, हम अपने बास बच्चों को रोकते हैं, नहीं रोकते बास बच्चों के लिए, हम बास चीज़ों को रोक लेते हैं, कहते हैं भाई इस बच्चे को नहीं देना। मसलन मसला हालत है, थोड़ा सा मिसाल को वाजे करूँ, अगर मेरे बच्चों में से कुछ बच्चे बीमार हों फ़र्ज़ करें, या बीमारी ना हो, मसलन एक कोई मेरा बच्चा है कि जो जो खट्टी चीज़ों के हवाले से उसकी सेंसिटिवनेस तेज़ है, यानी खट्टे चीज़ खा के गला ख़राब हो जाएगा, अब मैं क्या अपने सारे बच्चों को नहीं दूंगा, नहीं मैं बाकी बच्चों को दूंगा, लेकिन उसकी उस सेंसिटिवनेस की वजह से मैं क्या करूँगा, रोक दूंगा, उसे नहीं दूंगा। क्यों, उसके ना देने में मसलहत है, समटाइम मैं जिसको दे रहा हूँ उसके देने में मसलहत, जिससे रोक रहा हूँ उसके रोकने में मसलहत है। मैं क्यों ये कर रहा हूँ, मैं दे कर कह दो तुम बांटो, क्यों मसलहत है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर ये क्रिएट हो। ये अब ये मैं कह रहा हूँ फिर से रिपीटेडली कह रहा हूँ, ये बहुत ज़यीफ़ कंडीशन है जिसको हम अपने लिए तसव्वुर कर रहे हैं, अल्लाह के लिए ये इससे बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सूरत के साथ है। लिहाजा अल्लाह जिसको रोक रहा होता है वहाँ पर भी मसलहत है, जिसे दे रहा है उसके लिए भी मसलहत है। अब जिसको देकर अल्लाह ताला ये चाहता है कि ये दूसरों को दे, फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, हमने साइल और महरूम का हक कहाँ रखा है, इनके अमवाल में। क्यों, बड़ी अजीब सी बात है, जिनको अल्लाह ने दिया है, हर वो आदमी जिसके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आ गया है उसे ये बात अब सोचनी, क्यों मुझे अल्लाह ने ज़रूरत से ज़्यादा दिया, इसलिए कि ही वॉन्ट्स मी टू गिव टू, ये जो इजाफी है किसको देना है, साइल व महरूम के, क्या फ़ायदा होगा मुझे साइल व महरूम को देने का, मुझे क्या फ़ायदा। मैं कहता हूँ कोई और फ़ायदा ना हो, बट ट्राई टू थिंक दिस थिंग, इस एंगल से इसको सोचने की कोशिश करें, क्या कि जब अल्लाह मुझे, देखें अल्लाह ताला इसको दे सकता है, दे सकता है, लेकिन उसने क्या किया, इसका हक उठा के मुझे दे दिया। क्यों अल्लाह ताला इनडायरेक्टली कह रहा है, मुझे बहुत सारे फायदे हैं लेकिन मैं सिर्फ एक नज़र आपको पहुंचाना चाहता हूं, वो क्या है, जैसे ही मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा आया और मैंने इसको देना है, अब ये जो इस तक पहुंचेगा इसका असल मुनिम कौन है, अल्लाह है या नहीं है, अल्लाह इसका असल अता करने वाला कौन है, मैं तो नहीं हूँ, जो मेरे पास इजाफी आया वो भी किसने दिया है, अल्लाह ने दिया है। अब मैं जो इसका हक निकाल रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम क्या होता है, मैं जो निकाल रहा हूं मैं इसके और खुदा के दरमियान में क्या करार पा रहा हूं, लिंक ही को वसीला कहते हैं। अब आप खुद सोचिए, वसीले का जो असल कॉन्सेप्ट है हमारा, वो कौन है? कौन है हमारे लिए वसीला? अहले बैत। बस मैं जो काम अंजाम दे रहा हूं, इसका मतलब है, मैं नहीं कहूंगा इक्वल, लेकिन ये तकरीबन उस जैसा काम बन रहा है या नहीं बन रहा? उसी जैसा बन रहा है। यही उसी जैसा जब काम होता है तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है उस रिवॉर्ड की सूरत में कि जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फलां शख्स कयामत में मेरा हमसाया होगा। मसलन किसके बारे में कहा? यतीम की किफालत करने वाले के लिए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत में जो आया, क्या तशबीह दिया आपने अपने दो उंगलियों को जोड़कर, कब मैं और यतीम की किफालत करने वाले, ये क्या माना इसका? कभी आपने इस माना पर गौर करने की कोशिश की कि ये जो पैगंबर कह रहे हैं कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला दो उंगलियों से शबाहत दी, इस तरह से होंगे, यानी क्या? साथ साथ, ये तो समझ में आ रहा है, साथ साथ का माना क्या निकलता है, एंड रिजल्ट क्या है? एहसंत, एक जगह। अब एक जगह से क्या मुराद है? अब समझ में आ रहा है आपको? जन्नत के दराजात है ना, दराजात। और जन्नत के दराजात के बारे में बाज़ औक़ात ये मिलता है कि नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते। हाईएस्ट जो जन्नत का पॉसिबल मकाम होगा वो किसको आता होगा? मैं नबी नहीं हूं, इमाम नहीं हूं, मासूम नहीं हूं, बट आई कैन रीच दैट पॉइंट। देखिए, अब इनाम का मरहला जब आता है, एक मर्तबा एक इनाम है जो नबी को नबी की हैसियत से मिल रहा है, एक मकाम है जो नबी को नबी की हैसियत से मिल रहा है। मैं नबी नहीं हूं, मैं इमाम नहीं हूं, लेकिन रिवॉर्ड मुझे क्या मिल रहा है, या प्लेस जो मुझे मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? इक्वल टू नबी। लिहाजा नबी होना, जब ये यहां से अपनी इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर, हमारे यहां बाज़ जवान सोचते हैं, वो कहते हैं जी अगर हम इमाम होते तो हम भी ये कर लेते। फिर आप इमाम होते क्यों? बात यह है कि अगर इफ यू आर फॉलोइंग द रिवॉर्ड, आप किसी जगह तक पहुंचना चाहते हैं तो आप बगैर इमाम के भी वहां पहुंचना चाह सकते। यू हैव जस्ट टू फॉलो इमाम। आपके पास इमाम, देखिए महज तो जगह तक पहुंचने की है ना, हम ये कहते हैं भाई अल्लाह ने इमाम को यह मकाम अता कर दिया या नबी को यह हैसियत अता कर दी, यही है ना। तो मैं अगर इमाम होता तो मुझे मिलती नहीं। बीइंग अ फॉलोवर भी आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं, उसी मकान में पहुंच सकते हैं, पैगंबर के हमसाए हो सकते हैं, नबी के हमसाए हो सकते हैं, इमाम के हमसाए का माना क्या है? हमसाए का माना क्या है? हमसाए का माना ला उसी मोहल्ले में घर। हमसाया से तो नहीं कहते कि एक आदमी यहाँ रह रहा है, एक जाफर तैयार के में हमसाया नहीं है। हमसाया यानी क्या? एक ही मोहल्ले में, एक ही जगह होना, एक ही मकाम में होना, इसे हमसाया कहते हैं। और इससे ज़्यादा जो इमाम पैगंबर ने इशारा कर दिया दो उंगलियों को मिलाकर, अब इससे ज़्यादा तो बारीकी और कुर्बत नहीं बयान हो सकती ना। यानी ये दो उंगलियाँ मिली हुई हैं तो जहाँ पहली होगी वहाँ दूसरी, यानी इसके कयामत के जितने मराहिल हैं, कयामत के बाद जितने दराजात हैं, हम उस तक पहुँच सकते हैं कैसे? अपने अमल के ज़रिए से। तो अब ये जब देखिए ऐन अल्लाह, अब मैं कहता हूं कोई और रिवॉर्ड ना हो इस बात का, हम जो ये अपना हक मालूम निकालेंगे इसका कोई और रिवॉर्ड ना हो, तो एटलीस्ट रिवॉर्ड क्या है कि मैं क्या बन रहा हूं? अल्लाह और उस शख्स के दरमियान में वसीला करा रहा हूं। क्या ये कोई छोटा मरहला है? लिहाजा आप देखिए, चूंकि ये हैसियत होती है, लिहाजा फरमाया कि शख्स जब सदका निकालता है, महरूम के हाथ में पहुंचने से पहले कहां पहुंचता है? कहां पहुंचता है? अल्लाह के हाथ में। आपने उसके हाथ पर नहीं रखा, किसके हाथ पर रखा गोया? क्यों? बिकॉज यू आर बिकमिंग द लिंक, और अल्लाह आपको यू फैसिलिटेट कर रहा है कि तुमने गोया उसको नहीं दिया, किसको दिया है? मुझे दिया। अब ये जो लेन देन है ये क्या है? तिजारत। जितना इंसान इस तिजारत पे, फिर मैं एक दफा रिपीट करूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप है यहां पर, यहां मार्केटिंग टेक्निक्स हैं। आपने अपने प्रोडक्ट को जितना अच्छी तरह से प्रेजेंट किया उतनी ही उसकी अच्छी कीमत लगेगी। अब ये जो कीमत गुजारी हो रही है, क्या अब हमारे पास कुरान में वो मकामात भी हैं कि जहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमाता है? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्नलहुमुल, इंशाल्लाह इसकी तौज़ीह में अभी अल्लाह ने फुर्सत दी तो अर्ज़ करूँगा इंशाल्लाह। बिअन्नलहुमुल जन्नत से क्या मुराद है? अन्नलहुमुल जन्ना से यहाँ पर अगर बहस की जाए तो मुराद एग्जैक्टली प्राइस नहीं है, बहस है इंशाल्लाह कभी और उसको। अल्लाह उनसे खरीद लेता है उनके अम्बाल को और उनकी जानों को, मैं अन्नलहुमुल जन्ना, मेन खातिर के उनके लिए क्या बनाई गई है, जन्नत। जन्नत इज द लीस्ट प्राइस। कहानी अमीरुल मोमिनीन, क्या कहा आपने, अमीरुल मोमिनीन ने खुद को जन्नत से कम में मत बेचना, यानी कम में ना बेचने का मुराद क्या है, तुम्हारी लीस्ट प्राइस है ये जो अल्लाह खरीदने जा रहा है, लीस्ट प्राइस पे खरीदेगा अल्लाह, लीस्ट प्राइस पे खरीदेगा, करीम है, गनीमुल आलमीन है, बेस्ट प्राइस पे खरीदेगा। बेस्ट प्राइस लगाने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर आवर, जो हमारी चीज है उसको हमने बेस्ट, जितना बेहतरीन मैं बनाऊंगा, इसलिए क्या होगा, अब अगर मैं बेहतरीन नहीं बना सका तो लीस्ट जन्नत तो मिलेगी मुझे, उससे ऊपर को मैंने क्या करना है, जितना अच्छा जितना बेहतरीन मैं बनाता चला जाऊंगा उतनी ही मुझे बेहतरीन प्राइस मिलती चली जाएगी। ये फर्क है, अब अगर आपको ये फर्क समझ में आ जाए तो फिर वहां पे लहन में फर्क समझ में आता है, यानी यहां पे अल्लाह ताला ने क्या, इन्नल्लाह हश्तरा, अल्लाह खरीदता है, हां जब अल्लाह खरीदार है तो समटाइम्स होता है ना, समटाइम्स बायर इज इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स सेलर इज इंपॉर्टेंट, है ऐसा होता है या नहीं होता, कब होता है, देखिए ये मेरे और आपकी जिंदगी की आम बातें हैं, कहां सेलर इंपॉर्टेंट होता है, बायर इज इंपॉर्टेंट एवरीवेयर, सारी की सारी मार्केट किसके ऊपर डिपेंड करती है, बायर्स के ऊपर, अलबत्त ये कैपिटलिज्म के उन फरेबों में से है कि बहरहाल इसके ऊपर कभी और कैपिटलिज्म पे गुफ्तगू की तो फिर आपकी खिदमत में, एक तरफ से कहते हैं कि बायर जो है वो मार्केट डिसाइड करता है, दूसरी तरफ से मार्केटिंग टेक्निक्स के जरिए से, मास कंट्रोल टेक्निक्स के जरिए से क्या करते हैं, बायर को जो है वो ज़ॉम्बी बना देते हैं, उसको जो है वो मार्क के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, ब्रांड के अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, धोखा देना है ना, आप इसको फ्री करो, इसके माइंड को फ्री रहने दो, जाली टेक्निक्स के जरिए से, धोखे के जरिए से आप जो उसके माइंड को एक तरह से कैप्चर कर रहे हो, ये तो फ्री मार्केट नहीं है। खैर बहस कहीं और चली जाएगी, कहाँ होता है, जहां बायर की अहमियत है वहां पे कमोडिटी नॉर्मल कमोडिटीज है, लेकिन कहां पर जाके सेलर इज इंपॉर्टेंट, तकरीबन ये है, लेकिन हम आप उस कैपिटलिस्ट बिहेवियर से बाहर निकल के सोचे, ये कैपिटलिस्ट बिहेवियर है थोड़ा सा, वो जो कह रहे हैं क्वालिटी क्या हो आपकी, अब मसलन आपको मिसाल दें, मुझे मिसाल दे, मुझे मार्केट में मिसाल दें, वेयर बायर इज इंपॉर्टेंट, सॉरी सेलर इंपॉर्टेंट, सेलर इज इंपॉर्टेंट की मार्केट में मिसाल दें,
मेरे ख्याल से कॉमन एग्जांपल्स है, थोड़ा सा अगर आप सोचें
ब्रांड के ऊपर मतलब देखो तो सेलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डॉलर्स का भी आपको
मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा महसूस मिसालें मिल सकती हैं, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, मसलन अर्ज कर दूँ, मसलन दुनिया के मारूफ पेंटर्स, पेंटर्स जो मारूफ पेंटर्स होते हैं जो पेंटिंग्स बनाते हैं तो वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट जब खुद क्या हो रहा है सेलर बन रहा है तो वहाँ पे क्या होता है उसके पीस की कीमत लगाई जाती है, वहां पे सेलर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बायर इज इंपॉर्टेंट, बायर की इंपॉर्टेंस के जरिए से क्या होता है मुजाहिदा बैटिंग होती है, कीमत लगती है, हाईएस्ट जो प्राइस होती है उस पर बिकता है, सेलर सेलर जहां बेचने वाला
इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, चीज जब इंपॉर्टेंट हो जाती है तो क्या होता है,
जैसे आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट जब चीज बनाता है, अगर वाकई ऐसा आर्टिस्ट है तो क्या होता है वहाँ पे बायर्स आते हैं, आने के बाद बायर्स आपस में कीमत लगाते हैं, हाईएस्ट प्राइस को खरीदा जाता है, जबकि आम मार्केट में क्या होता है चीज़ पड़ी हुई है, बायर आता है अपने लिए सेलेक्ट करता है ले जाता है, ठीक। अब जब ये आयत जो मरहला है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, यहाँ पर बायर इंपॉर्टेंट है, खुदावंद, मार्केट लगी हुई है, खुदावंद आएगा जिसने जितना इखलास किया होगा उस हिसाब से प्राइस लगाता चला जाए। लहन बदलता है कहां पर, व मिनन्ना से मैं यश्री नफ्सहु इब्तिगा अमरवातिल्लाह, बदल जाता है लहन। क्यों बदल रहे लहन, इसलिए कि वहां पर अब देखिए बायर्स के दरमियान सेलर्स के दरमियान में से कोई सेलर ऐसा है कि जिसका प्रोडक्ट ऐसा है कि फिर बायर आकर उसके ऊपर कीमत लगाएगा और बेस्ट प्राइस पे लेके जाएगा। तो बेस्ट प्राइस क्या है, कोई नफ्स ऐसा है। ये नफ्स कौन से थे, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना बे अनफुसहुम अमवालहुम व अनफुसहुम बे अन्नलहुमुल जन्ना। ये कौन सी मार्केट है कि जिसके अंदर प्रोडक्ट मौजूद है, बहुत सारा मौजूद है, खुदा आएगा खरीदेगा, खरीदने के बाद क्या करेगा, जिसकी जितनी उसको समझ में आएगी प्राइस लगाएगा, ले लेगा। लेकिन वो मकाम कौन सा है, अब हम अपनी जबान में बात करें कि जहां पे आर्टिस्ट बेनजीर है, आर्टिस्ट लाजवाब है, आर्टिस्ट का जो पीस है वो क्या है, लाजवाब है, लिहाजा जो उसके लिए प्राइस लगेगी वो हाईएस्ट बिड होगी, वहां बिडिंग होगी, वहां पे बेस्ट प्राइस लगेगी। तो बेस्ट प्राइस खुदा की तरफ से क्या आ रही है, वमिनन्नासमई यशरी नफ्सहु इब्तिगा। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को अपना नफ्स बेचते हैं किसके बदले, इधर प्राइस जन्नत है वहां प्राइस क्या है, मरज़ातिल्लाह। ये जो अब कारोबार अल्लाह ताला कर रहा है, ये जो बिजनेस, इसका मतलब ये क्या है, ये सारे का सारा उसी बिजनेस की जबान में है। यही जो बिजनेस है इससे ज्यादा कॉमन है। अब ये तो हमने थोड़ा थोड़ा बड़े स्केल पे इसको देखा, इसी को आज छोटे स्केल पे कर दें। छोटे स्केल पे अल्लाह ताला क्या करता है, छोटे स्केल पर अल्लाह ताला चीज़ें खरीदता है, रोज़मर्रा की ज़रूरियात चीज़ें खरीदता है, छोटी छोटी चीज़ें भी खरीदता है। कितनी छोटी चीज़ें खरीदता है, कितनी छोटी, कितनी छोटी, आपकी मुस्कुराहट खरीद लेता है। जब आप अल्लाह की खातिर, मर्द अपनी बीवी को मुस्कुरा कर देखता है, अल्लाह की खातिर बीवी तमाम जितने भी आहमी रंजिशें ख़त्म करके शोहर को मुस्कुरा कर देखती है, खुदा खरीद लेता है। जब आप अल्लाह की खातिर उन रंजिशों को हटाएंगे, खुदा आमादा है खरीदने के लिए। आप खुदा के लिए अपने अपना ही बच्चा है, लेकिन जब आप उसके लिए उस एहतराम के कायल होंगे, खुदा वो एहतराम खरीद लेता है। बच्चों से माँ बाप का, जब बच्चे माँ बाप खुदा की खातिर अपने माँ बाप का एहतराम करते हैं, क्या होता है, अल्लाह की खातिर जब भी करेंगे क्या होगा, खुदा वो एहतराम खरीद लेगा। खुदा बच्चा अपने वालद खुदा की खातिर अपने वालदैन को हंसाना चाहता है, अपने वालदैन का दिल खुश करना चाहता है, वो मस्खरा शक्ल जो वो बनाएगा, खुदा वो मस्खरी शक्ल खरीद ले। ही इज रेडी टू बाय। नाउ द क्वेश्चन इज, हम बेचने के लिए आमादा हैं, हम बार्गेन करने के लिए आमादा हैं। लिहाजा फरमाते परवरदिगार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हें बताऊं, क्या मैं तुम्हें रहनुमाई करूं एक तिजारत की तरफ जो क्या करेगी, तुंजीकुम, तुम्हें बचा लेगी, मिन अज़ाबिन अलीम, अज़ाब अलीम से। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात हो रही है, टोटल स्पेक्ट्रम बड़ा क्या है, तुमने क्या करना है, तुम अज़ाब अलीम से बच जाओगे, तो उमिनूना बिल्लाह व रसूलह, ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल, ईमान बिल्लाह बेतनहाई काबिल कबूल, रसूल पर लाना है। अब जब रसूल कह दिया तो फिर रसूल की पूरी शरीयत अज अव्वल ता आखिर यू हैव टू फॉलो। ईमान लाओ अल्लाह पर, रसूल पर, और तो जाहिदून, जिहाद करो, कोशिश करो, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, बे अम्बालिकुम व अनफुसिकुम। यहां पर कल एक बात मैंने आपसे अर्ज की थी कि जब हकीम अम्बाल को मुकद्दम कर रहा है, पहले ला रहा है ना, और कई मकामात पर अल्लाह ने ये किया है कि जहां कहीं पर भी बात नफ्स और माल की आती है, अल्लाह माल को पहले लेकर आता है। क्यों, कुछ है जहन में, बिल्कुल सारी आपने ये जितनी बातें की, एक छोटा सा नुक्ता सिर्फ इजाफा करूंगा। देखिए माल और जान, ये दोनों को अल्लाह ने अम्बाल को इसलिए किया क्योंकि अम्बाल से जो जिहाद है उसकी कैफियत उमूमी है नफ्स के जिहाद के मुकाबले। ये जो नफ्स का जिहाद है, ये जो जान देने की बात है, क्या ये हर वक्त है, मतलब मुझे अभी अपनी जान से अगर जिहाद करना, मैं क्या करूं, کیا کروں میں؟ لہذا اللہ مال کے جہاد کو مقدم کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی عمومیت ہے, اور مقدم کر کے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جان کے کا جو جہاد ہے اس کو تم مال کے جہاد سے کم نہیں سمجھنا, ایسا نہیں ہے. فرق صرف کیا ہے کہ اس کی کیفیت عمومی ہے, اس کی کیفیت خصوصی ہے, وہ خاص کنڈیشنز میں آئے گا. اور اچھا وہ کب حاصل ہوگا؟ جب میں اپنے دنیاوی تعلقات کو کاٹ چکا ہوں گا, جب میں دنیا میں مراحل یہی ہوتا ہے نا, انسان جب آ کر دیکھتا ہے دنیاوی تعلقات میں سب سے زیادہ چیز جو اس کو سخت محسوس ہوتی ہے وہ کون سی ہے. اب یہ جو مال کا جہاد ہے, اگر اف آئی ایم کنٹینیوسلی آئی ایم ڈوئنگ دس جہاد, اب وہ والی بات جو آگے نہیں کہی کہ اٹ ول میک یو پریپیئر فار دا جہاد بن نفس, آپ کو آٹومیٹیکلی آمادہ کر دے گا. جب انسان سوچتا ہے جب میں ہر چیز اللہ کے راستے پہ دینے کے لیے تیار ہوں. لہذا عزیزان من, لہذا آئمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ایک مستمر سنت ہے کہ جس کو خود آئمہ نے کئی بار, یعنی ایک امام نے کئی بار دہرایا ہے, آئمہ نے یعنی نفر سنگل امام نے, اور آئمہ نے مسلسل یعنی ہر امام کی زندگی میں یہ تکرار ملتی ہمیں. کیا کہ آئمہ ایک سٹیج پر آ کے اپنا پورا مال دے دیا کرتے تھے, ایوری تھنگ کائنڈ آف, جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوبارہ صفر پہ لے آنا, اینڈ دین دے اسٹارٹ دوبارہ وتھ صفر, اپنے آپ کو دوبارہ زیرو سے ہر چیز دے دیتے تھے. ایک ٹائم ایسا آتا تھا ایوری تھنگ, اور یہ وہ سیرت ہے جو ہمارے ہاں بہت کم پائی جاتی ہے. یہ وہ مراحل ہیں جہاں پر تقوی کے مراحل میں جو توکل اور تسلیم کا مرحلہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. سم ٹائمز اپنے آپ کو اپنے ایمان کو آزمانے کا مرحلہ ہے, اپنے توکل کے مرحلے کو آزمانے کا. میں اپنا سب کچھ دے دوں, کیا سوچ کے دے رہا ہوں کہ جس نے پہلے دیا تھا وہ دوبارہ دے سکتا ہے, جس نے یہ دیا تھا اس سے اچھا دے سکتا ہے. اللہ نے حتیٰ اپنے بعض انبیاء کے ساتھ یہ کیا نہیں کیا, سب کچھ لے لیا ایک بڑی مدت تک کے لیے, حتیٰ لوگ ان کو تانے دینے لگے, لیکن پھر کیا کیا اللہ نے, ہر چیز لوٹا دی. یہ لے کر واپس جو کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے. جب نبی سے لیا جا سکتا ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک مرتبہ اللہ لیتا ہے, اس کا اپنا ایک الگ فلسفہ ہے, اس کے اپنے الگ مقامات ہیں, اور ایک مرتبہ انسان اپنی مرضی سے آگے بڑھے. اب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, مگر اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے, مگر اس وقت میانمار کے مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے, اس وقت شام کے مومنین کو ضرورت نہیں ہے, مگر اس وقت یمن کے مسلمانوں کو ضرورت, مومنین کو ضرورت نہیں ہے. ہیں ہمارے درمیان افراد؟ ہے کوئی اس وقت؟ یمن میں پچھلے دنوں جو حالات چل رہے تھے اس کی نیوز کیا تھی, ایوری 10 آورز میرے خیال سے ایک بچہ مر رہا تھا. قحط کی وہ جو دوائیاں نہ پہنچانے, یعنی کہ ظلم ہے یہ جو اس وقت یمن میں ہو رہا ہے. یعنی بعض ایون یہ ہماری مشکل یہ کہ ہم نہیں سمجھتے, غرب میں لوگ سمجھ رہے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم جن کو بے دین سمجھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ وار, دس از جینوسائڈ. ٹھیک ہے تم اسلحہ برسا رہے ہو, اپنی تم نے پوری قوت لگا دی, لیکن دوائیں تو پہنچنے دو, غذا تو پہنچنے دو, یہ انسانیت ہے. یعنی تم اگر بم سے, گولوں سے, بارود سے شکست نہیں دے سکے تو تم اس سے شکست دینے کی کوشش کرو. مجھے نہیں پتا وہ خدا کے بندے کتنی ان کے اندر صلاحیت ہے, کتنا ان کو اللہ نے برداشت دی ہے کہ ابھی تک مقاومت کر رہے ہیں, ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں, ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. سالوں پر محیط ہو گئی یہ جنگ, مد مقابل ہماری طرف سے کیا ہے, کتنے لوگ ہیں ان کے لیے دینے والے سب. لہذا آئمہ کی ایک مستمر سیرت میں کیا رہا ہے, آئمہ کی سیرت میں سے یہ سلسلہ رہا ہے, اپنا پورا مال سب کچھ آئمہ دے دیتے تھے, اینڈ دین دوبارہ اسٹارٹ وتھ زیرو. یہ بھی تو بزنس کا ایک طریقہ ہے, یہ بھی تو ہے بزنس, اللہ کے ساتھ بزنس کا یہ بھی طریقہ ہے. اللہ کی راہ میں سب کچھ دینے کے بعد آپ دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, یہ وہ چیزیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھیے, اس میں میں یہاں پہ کیپشن لگاتا جاؤں کہ یہ سارا اموال دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو ضرر میں اور تکلیف میں مبتلا کر دیں. حتیٰ آئمہ بھی یہ سلسلہ اس وقت کرتے ہیں جب ان کے اپنے بچے, ان کے اپنے گھر والے اس چیز کے لیے آمادہ ہوں. یہ مراحل آہستہ آہستہ طے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ انسان تقوی یعنی خود تقوی اختیار کرتا ہے اور پھر اپنے گھر والوں کو. قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے اور اپنے گھر والوں کو دونوں کو. لہذا ایک مرحلہ, یہ مرحلہ کب آتا ہے؟ جب آپ کا اپنے گھر والے آپ کے افراد آمادہ ہو قربانی کے لیے, آمادہ ہو تیاری کے لیے, تب یہ مراحل میں داخل ہوتے ہیں. اس کیپشن کے ساتھ بتا رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ کل خواتین آ جائیں مجھ سے شکایت کرنے کے لیے. کب ہے یہ سلسلہ؟ جب خود خواتین آمادہ ہو. اور پھر آپ یہ سوچئے کہ وہ گھرانہ کس مقام پر کھڑا ہوگا کہ جو اہل بیت کی سنت کی خاطر ان سارے سلسلوں سے اپنے آپ کو گزارے, اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہوگا خانوادے کا جو کہ جہاد بالمال کر رہا ہو اس انداز سے. لہذا جو جہاد بالمال کو فوقیت دی گئی یا مقدم کیا گیا اس کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ذالک دور کا بھی اشارہ ہوتا ہے اور کسی شے کی عظمت کا اشارہ بھی ہوتا ہے. یہ جو بات کی گئی ہے یہ کیا ہے تمہارے لیے؟ خیر, سب سے بہتر ہے. خیر کے مادے کے لیے عرض کرتا چلوں جاؤں کہ یہ جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک عربی میں مثلا کبیر ہے اور ایک اکبر ہے, اکبر سب سے بڑا. یہ جو افعل کا وزن ہے یہ استعمال ہوتا ہے عربی میں افضل و تفضیل کے لیے. اکبر سب سے بڑا, اصغر سب سے چھوٹا. خیر اور شر کا جو مادہ ہے اس میں یہ مادہ استعمال نہیں ہوتا. خود خیر سب سے بہترین کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے. کہاں سے سمجھیں گے؟ ذالک سے. ذالک بتا رہا ہے کہ یہ جو خیر ہے, ذالک بزرگی کی طرف اشارہ کرتا ہے. جب ذالک بتا رہا ہے, ذالک کیا کہہ رہا ہے؟ یہ چیز تمہارے لیے کیا ہے؟ سب سے بہترین. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تجارت کی بات کر رہا ہے. اب اس تجارت میں جو سب سے بیسٹ تجارت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ تجارت ہے. کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کنتم تعلمون, اگر تم جاننے والے ہو تو. کیوں؟ اس لیے کہ اس تجارت کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں پریکٹیکلی تو محسوس نہیں ہوگا نا. یہ جو اللہ پر ایمان لانا ہے, رسول پر ایمان لانا ہے, مال یا نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے, اس کا جو پریکٹیکل فائدہ, اس کی جو خیر سب سے بیسٹ ہونا ہے وہ محسوس نہیں ہے. لہذا اس کے لیے تمہارا علم ضروری ہے. تم اگر اس کو جانو اور اس کو سمجھو تو پھر یہ اپنا اثر دکھائے گا, تب تمہیں محسوس ہوگا. ایزیلی جسے کہتے ہیں محسوس ہونے والی چیز نہیں. علم ایمان کا مقدمہ ہے. لہذا یہ جو کہہ رہے ہیں ان کنتم تعلمون اسی لیے کہا جا رہا ہے, کیونکہ اگر تم علم کے مرحلے میں سمجھ جاؤ گے تو ایمان کے مرحلے میں داخلے کے لیے کیا ہوگے؟ آمادہ ہوگا. اب اثر کیا ہے اس تجارت کا؟ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے کیا کرے گا؟ گناہ. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تمہیں داخل کر دے گا جنت میں, باغات میں, کہ جن کی صفت کیا ہے؟ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, جن کے نیچے نہریں ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً, مساکن گھر, رہنے کی جگہ, سکونت اختیار کرنے کی جگہ. طیبہ پاک, پاکیزگی کی جو ہائیسٹ ڈگری ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ طیب. کہاں؟ فی جنات عدن. عدن کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ درجے تقریباً. خلود جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کے معنوں میں. یہ جو مساکن طیبہ ہیں یہ کہاں پر ہیں؟ جنات عدن میں ہیں. اور یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ ذالک الفوز العظیم. ذالک پھر کس چیز کا اشارہ ہے؟ بزرگی کا. سوری, یہ بڑی کام ہے. فوز بھی ہے, ذالک کے ذریعے سے بھی اشارہ ہو رہا ہے اس کی عظمت کی طرف, اور کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ خود لفظ عظیم کی طرف. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فوز عظیم. فوز کو ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ کامیابی. قرآن میں تقریباً 3 لفظ استعمال, ابھی ایک لفظ آگے بھی آنے والا ہے, ایک لفظ ہے فتح، ایک لفظ ہے فلاح اور ایک لفظ ہے فوز. فتح جس کو ہمارے یہاں فتح کہتے ہیں، فلاح اور فوز. ہم اردو میں تقریباً ان تینوں کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا ہے، کیا فرق ہے فتح فوز اور فلاح میں؟ احسنت. مقابلے میں کوئی شے ہو، اس شے کو جب آپ کمپلیٹلی اپنے کنٹرول میں لے لیں گے تو فتح حاصل ہو جائے گی. فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح کامیاب. فوز، فوز بھی کامیاب. تقریباً نزدیک پہنچے آپ کامیابی، لیکن عربی میں معنی کامیابی میں استعمال ہوتا ہے ہم المفلحون سے کیا مراد ہے؟ فلاح پانے والے، یعنی کیا آپ فلاح کو بہبود کے ساتھ مکس کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے، فلاح و بہبود سے کانسیپٹ نکال رہے ہیں، فلاح کا فلاحی کاموں کے اعتبار سے نکال رہے ہیں. نہیں نہیں، فلاح کامیابی کے ہی معنوں میں، فرق ہے تھوڑا سا. احسنت احسنت. فلاح کے اندر جو کامیابی ہے، فلاح کے اصل معنوں میں ہے شدت، مشقت پائی جاتی ہے فلاح کے اصل معنوں میں. لہذا وہ چیز جو مشقت کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہو اسے فلاح کہتے ہیں. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ لازمہ تھا کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر ہم اپنے اصل ہدف سے بہت دور ہو جائیں گے. قرآن میں فلاح کا کیا کانسیپٹ آیا ہے، کیا کیا وجوہات فلاح کے لیے بیان ہوئی ہیں، فوز میں فوز کے لیے کون کون سے مقامات بیان ہوئے ہیں، فتح کے کون کون سے مقامات بیان ہوئے ہیں. کیونکہ موضوع یہ ایک صرف ایک الگ سے موضوع بن جاتا ہے، یہ کامیابی از حیث قرآن ایک صرف ایک موضوع ہے. لازمہ تو اس میں جب ہم کامیابی بیان کریں گے تو پھر یہ سارے موضوع الگ الگ جداگانہ بیان ہو سکتے ہیں. میں بتا رہا ہوں ابھی، فلاح جو کامیابی ہے وہ کیا ہے، مشقت کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے جو حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فلاح. فوز جو ہے وہ الٹیمیٹ کامیابی ہے، الٹیمیٹ کامیابی، جس کے بعد کامیابی کا سمجھ لیں اور آگے کوئی تصور نہ ہو، الٹیمیٹ کامیابی، نہائی کامیابی کو کہتے ہیں عربی میں فوز. لہذا اب جو ہمیں یعنی اسی کو کنسنٹریٹ کریں، کہاں پر ایام آنے والے ہیں، شب آنے والی ہے کون سی، جہاں پر آواز بلند ہو رہی ہے، فستو کیوں امام فستو کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں الٹیمیٹ کامیابی ہے. یہ جو کامیابی ہے فتح نہیں کہہ رہے، فلاح نہیں کہہ رہے، کس کو استعمال کر رہے ہیں، فوز کو استعمال کر رہے ہیں. فستو وہ، یعنی کیا، یہ جو ہوا ہے اب یہ میرے لیے کیا ہے، دس از الٹیمیٹ کامیابی. اللہ کی قسم کھا کر کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے، الٹیمیٹ کامیابی، اینڈ رزلٹ، اینڈ کامیابی. اسی لیے یہ جو فوز ہے اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. مثلا آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونے میں کیا ہے، فیا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. آئمہ اہل بیت کے ساتھ ہونے میں کیا ہے، فوز، الٹیمیٹ کامیابی ہے. کربلا میں امام کے ساتھ ہونے میں کیا، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونے میں کیا ہے، یہ فوز ہے. یہ جو ہے یہ فوز، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جنت میں پہنچ جانا آپ، یعنی ایک فوز وہ ہے جس کا ظہور دنیا میں ہو رہا ہے، قیامت میں آپ کا جنت کے ان مقامات میں پہنچ جانا کیا ہے، یہ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے نا. مطلب جنت کے کسی ایسے مقام تک پہنچ جانا، جنت کے کسی ایسے مقامات کو در کر لینا، اس سے زیادہ انسان کے لیے کوئی بڑی کامیابی ہے؟ الٹیمیٹ کامیابی کیا ہے، الٹیمیٹ کامیابی ہے کہ انسان اس مقام میں پہنچ جائے جو کہ اللہ کے ان بندوں کا مقام ہے جن سے وہ راضی ہو. سعادت عبدی کے مقام میں پہنچ جانا، اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی الٹیمیٹ کامیابی کوئی نہیں ہے. لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اگر تم جنت تک پہنچتے ہو تو پھر یہ کیا ہے، فوز عظیم ہے، الٹیمیٹ کامیابی کا بھی عظیم درجہ ہے.
جنت میں دیں کیونکہ لوور لیول کی
का अजर है
जी,
इसके अंदर ये बताया कि सर काम उसी का है कि वो अल्टीमेट कामयाबी कहाँ मिलेगी।
जी जी, मैं बहुत अच्छा नुकता आपने जिसकी तरफ इशारा किया। देखिए जन्नत, अब बात क्या होती है, जैसा आपने खुद इशारा किया कि जन्नत बरा बज़ाहिर हमने जैसे इशारा किया लीस्ट ए प्राइस, ठीक है, लेकिन हमें ये बात कुरान की और आयात से भी मौजूद है, हमें मालूम है कि जन्नत के अपने दराजात और मकामात हैं। अब जितना आपने बेहतरीन तिजारत की होगी उसी एतबार से आपको मकामात मिलते चले जाएंगे। क्यों अल्लाह ताला इस मकाम पर लीस्ट को जिक्र कर रहा है, इसलिए कि जिसने भी इसके लीस्ट दर्जे को हासिल कर लिया, एटलीस्ट इवन लीस्ट मकाम, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लीस्ट मकाम, यानी अगर आप जन्नत से, खुदा ना खास्ता मैं जन्नत से उस तरफ रह जाऊं, गेट से मुझे वापस कर दिया जाए, गेट तक पहुंचने में मुझे कई हजार साल लग जाए, ये सारे सारे क्या है मसाइल। लीस्ट लेवल पर भी अगर मैं पहुंच जाता हूं तो भी ये अपने अंदर क्या है, कामयाबी, कम अज कम मेरी नस्बत से, मेरी नस्बत से, यानी अगर इंसान आप अपनी नस्बत से देखें, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए बात कर रहा है, हमारे लिए जब बात कर रहा है तो वो लीस्ट सतह को इसलिए बयान कर रहा है कि एटलीस्ट अगर तुम यहां पर भी पहुंच जाओ तो तुम्हारी नस्बत से ही क्या है, फौज है, अल्टीमेट कामयाबी, यानी इन द एंड अगर मेरा एंड जन्नत में होता है तो इससे बड़ी कोई कामयाबी है, कोई कामयाबी नहीं। अब ये जरूर है कि मैं अगर उससे ऊपर के दराजात में जाऊंगा, मेहनत करूंगा, मेरा इखलास ज्यादा होगा, मेरी कोशिश ज्यादा होगी, मेरी तिजारत अच्छी हुई होगी, तो उससे ऊपर जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना बेहतर। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने इसीलिए इशारा किया इस बात की तरफ कि जितना इंसान तिजारत के मरहले में होगा, वरना मैंने मरजात का लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि वहाँ एक प्राइस जन्नत है लीस्ट, और मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकती है, मरजातिल्लाह, उससे ऊपर भी प्राइस मौजूद नहीं है। तो ये जो फ़र्क आ रहा है दोनों में, ये किस चीज़ में, तिजारत की कैफियत में है, जो जितनी बेहतर तिजारत करेगा उसको, लेकिन जब अल्लाह ताला बात कर रहा है तिजारत का एंड रिजल्ट, तो लीस्ट को इसलिए रख रहा है कि ये सबसे आखिरी मरहला है। इवन जो लोग इस लेवल तक पहुंच जाएंगे उन लोगों के लिए भी नौई अपनी नस्बत से, यहाँ पे फिर खुद ब खुद जो बहस है वो नस्बी हो जाएगी। एक तो मरहला ये हो गया, दूसरा मरहला क्या है, वअखरा तुहिब्बूनहा, एक चीज़ तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, दूसरी चीज़ क्या मिलेगी, तुहिब्बूनहा, जिसे तुम क्या करते हो, पसंद भी करते हो, वो क्या चीज़ है, नसर मिन अल्लाह व फतहुन, अल्लाह की तरफ से नुसरत आएगी, फतह करीब होगी, वो बशरुल मोमिनीन, अभी जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, फिलहाल ये फिर अर्ज कर दूं कि ये तकरीबन लीस्ट लेवल्स हैं, और लीस्ट लेवल में से ये फतेह करीब खुद एक बहस है, फतेह करीब। अब आप में से कितनों को याद है जो कल्ब का पीछे जिक्र आया था, वहां मैंने चार कल्ब का जिक्र किया था रिवायत में, कौन कौन से कल्ब थे, कल्बे मनकूस उल्टा हुआ, कल्बे मतबू जिस पे मोहर लगा, मोमिन के कल्ब का क्या नाम था, कल्बे मफतू, कल्बे सलीम एक और हैसियत है, रिवायत से जो मैंने भी क्लासेस में पीछे जहाँ पे आया था ना, अजागू अजाग अल्लाह कुलूबहुम, ये वाली आयत जो आई थी वहाँ पे, मैंने कुलूब के हवाले से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू आपसे की थी, उसी मुख्तसर गुफ्तगू का एक और इशारा आप यहाँ पे करता हूँ आपको। एक फतेह करीब से क्या मुराद है, एक फतेह करीब से वो मुराद है कि जो हम और आप एक जनरली समझ सकते हैं, यानी जब आप ये तिजारत करो तो इंसान पसंद क्या करता है, यकीनन फतह, कामयाबी, ये कामयाबी भी है, वो कामयाबी के जो बहुत जल्द आने वाली है। मुतवज्जे नहीं हुआ मैं, एहसन, ये मतलब है, यानी आप अगर ईमान की स्टेजेस में, एक जन्नत तो है ही, दुनिया में भी आपको क्या मिलेगी, कामयाबी, और ये दुनिया की जो कामयाबी चूंकि ये हिस्सी एतबार से करीब है, फील होने के एतबार से नज़दीक है, इसलिए एक माना ये। दूसरा माना जो उरफा ने इसमें लिया है इस फतह करीब से, वो ये है कि वो जो कहा कि मोमिन का कल्ब मफ्तू है, उस मफतू के दो माना निकलते हैं, एक मफतू बाज के खुले होने के माना में फत से फतुल बाब, एक माना क्या था फत बेतबार कैप्चर करना, गलबा हासिल कर लेना। जब आप गलबा हासिल करते हैं तो क्या होता है, जो दुश्मन होता है उसके पूरे तसल्लुत से बाहर जब निकालते हैं तो आप कहते हैं ना कि मैंने इसे मफतू फतह कर लिया। मफतूहा इलाका कौन सा होता है, जिसको आप बिल्कुल दुश्मन से भाग कर चुके। लिहाजा फरमाया कि ये जो मोमिन का कल्ब है इसके लिए तीन मकामात फतह अल्लाह ने बयान किए हैं, और पहला मकाम फतह यही है नसर मिन अल्लाह व फतह करीब। ये जो कल्ब है कल्ब मोमिन, इसकी पहली फतह इसकी खिलकत ज़ातिया के एतबार से होती है कि जो अल्लाह ने इसको खल्क किया है अपनी खिलकत अव्वलिया के एतबार से इसके अंदर तौहीद है। कल्ब को नफसानी ख्वाहिशात से पाक कर लेना ये पहली फतह है अंदरूनी दुश्मन से। बैरूनी दुश्मन कौन है, कौन है बैरूनी दुश्मन, कौन है बैरूनी दुश्मन, शैतान। तो दूसरी फतह किसके मुकाबले पर है, शैतान। उसके लिए क्या फरमाया, इन्ना फतहना लका, दूसरी फतह फतह है किसके मुकाबले पर है, शैतान। तीसरी फतह के बारे में फरमाया कि जो कुलूब को हासिल होती है वो फतह मुतलक है, फतह मुतलक। इज़ा जा नसरु मिनल्लाह वल फतह, यहां फत के साथ लफ्ज करीब आया, वहां फत के साथ लफ्ज मुबीन आया, वहां पर अल फत अल्टीमेट कामयाबी वो कहां होती है, नफ्स भी गया शैतान भी गया तकरीबन। अपने आप को सिरात पर ले आना, इमाम की ताबेइयत में कामिलन कामिलन इमाम की ताबेइयत में आ जाना। क्यों, क्योंकि इमाम ही क्या है, सिरात। लिहाजा बस आखिरी लम्हों में एक बात कहकर आपकी ज़हमतों को तमाम करूं, आयतुल्ला जवादी आमली हफ़ज़हुल्लाह ताला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि ये जो शैतान ने कहा है ना कि मैं लअक़ुदन्ना अला सिरातिकल मुस्तकीम वलअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लिसीन, फरमाया ये जो शैतान ने कहा है कि मैं तेरी सिरात पर बैठ जाऊँगा, इस सिरात पर बैठने से मुराद क्या कि वो सिरात पर होगा, रास्ते की रुकावट बनेगा, तो होगा खुद सिरात पर या नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए कि सिरात खुद कौन है, इमाम। हादा सिराती, जो अब यह जाके रिवायत मौजू नहीं है, मतलब अपनी जगह ये मज़ेदार डिस्कशन है, इंसान अगर करे तो बाप को खोले तो। हादा सिराती क्या है, ये जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो मेरी सिरात है, किसकी तरफ इशारा है, रिवायत में जाकर देखें कि कहा ये जो हादा सिराती कहा है इस सिरात से मुराद इमाम अली और उनकी औलाद का रास्ता है। एहसंत एहसंत एहसंत, क्यों, इसलिए आयतुल्ला जवादी आमली फरमाते हैं, कहते हैं कि शैतान सिरात पर नहीं है, सिरात पर पहुंचने वाली रास्त वो जो राह है जो सिरात तक पहुंचाएगी, मनसे सिरात पर है, लेकिन जैसे ही इंसान सिरात पर आ जाता है तो शैतान खत्म हो जाता है। अब हम ये सोचते हैं कि शैतान शैतान खत्म होने वाली चीज नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान और उसका कैद दोनों क्या है, ज़ईफ़ है, उसको तुम्हारे ऊपर कोई तसल्लुत नहीं है। ईमान की कुव्वत में जो कुव्वत पाई जाती है कि इंसान उस मकाम पर पहुंच जाए जहां पर शैतान उसे बहका ना सके। कहां होगा, जब इबादकल मुखलिसून से अपने आप को 100% अटैच, ये अटैचमेंट ये सिरात पर आना क्या है, उसको शैतान से हमेशा के लिए क्या कर लेगी, महफूज कर लेगी। फिर जो उसके बाद इम्तहान के मरहले हैं वो अलग मरहले हैं, वो और मकामात हैं कि इंशाल्लाह अर्ज करूंगा, लेकिन अगर एक मर्तबा इंसान सिरात पर आ जाए तो ये अल्टीमेट कामयाबी है, ये है फतह मुतलक। लिहाजा इस फतह, ये जो मैंने इसको ज़्यादा ओपन नहीं किया क्योंकि अगर मैं ओपन करूंगा तो बहस हमारी बहुत दूर निकल जाएगी। इंशाल्लाह अगर खुदा ने तौफीक दी तो कल इस आयत का, इस सूरा का जो आखिरी और आयत सबसे बड़ी आयत है, इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे और खुदा के फजल करम से इंशाल्लाह ये सूरा पूरी होगी। मैं कोशिश करूँगा, चूँकि सूरह मुतफ़िफ़ीन में आयात की तदाद ज़्यादा है लेकिन आयात उसकी बहुत मुख्तसर हैं, मुझे उम्मीद है कि हम 5 जलसों में इंशाल्लाह अगर खुदा ने तौफीक दी اس کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم پانچ جلسوں میں متففین کو اگر خدا نے توفیق دی تو اس کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے ہم. نہیں یقیناً آپ نے بزرگواری کی بندے کو اس قابل سمجھا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ چونکہ دوستوں کے ساتھ شیڈیول طے ہو چکا تھا اس سے آگے کے بھی جو شیڈیول ہیں وہ طے ہو چکے ہیں, تو چونکہ تھوڑی سی مصروفیت طے ہو چکی ہے اس لیے میں معذرت خواہوں, لیکن انشاءاللہ سال آئندہ بھی انشاءاللہ اگر خدا نے زندگی حیات توفیق ایمان سب کچھ عطا کیا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. دعا کرتے ہیں بارہ الہٰ میں حق محمد و آل محمد ہم سب کو قرآن سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس بابرکت مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کا تجھے واسطہ ہے. صاحب حاضر شہر صاحب حاضر کتاب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بارہ الہٰ جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور, مشکلات کو آسان فرما. جتنے بھی ہمارے مریض خصوصاً جو مریض مورد نظر ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے اسیروں کو بارہ الہٰ جلد از جلد رہائی عنایت فرما, خصوصاً شیخ ابراہیم زکزاکی کو رہائی عنایت فرما. بارہ الہٰ جہاں جہاں بھی مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, خصوصاً یمن اور شام کے مومنین کی مدد فرما, فلسطین و میانمار کے مومنین کی مدد فرما. بارہ الہٰ تمام علماء مراجع اعظام کے سایوں کو ہمارے سر پر مستدام رکھ, بالخصوص رہبر انقلاب انقلاب اسلامی, حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بارہ الہٰ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.